सो व्हेन वी थिंक अबाउट कि अरे इंडिया का वेज ग्रोथ क्या है, अरे भाई वेज ग्रोथ जो है वो इज ओनली 40 वेजेस आर ओनली 40% ऑफ हाउस होल्ड इनकम. फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल वर्कर आर पर कैपिटा जीडीपी इज दैट ऑफ एन अपर मिडिल इनकम इफ नॉट अ रिच कंट्री. द रीजन व्हाई आर एवरेज पर कैपिटा इनकम इज सो लो इज बिकॉज वी हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेक्टर पीपल वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर.
मेक इन इंडिया has been a big campaign. So where are we held in that? Is it reason to believe that in next 5 to 10 years will generate substantial number of this large scale manufacturing jobs in India?
In the next 20 years, business services exports are going to be way bigger than what IT services exports have been in the last 30 years.
Any discussion on jobs in today's time will be incomplete without talking about potential impact on AI.
It actually is an opportunity for India as much as it is a threat.
Nilkanth, welcome. Episode 4. Thanks for doing this series. I think we have had very interesting conversations so far. And this topic is, I think, somewhat related to earlier discussion we had about GDP. We all have these dreams of, I don't know whose number to use, but 20, 25 or $30 trillion economy, but big numbers compared to where we are at. But big part of that is also very inclusive growth. And, I think, one big parameter of any developed economy is ki sabke paas rozgar hai, achha wala rozgar hai, per capita income or, jo household income is sufficient to take care of all your basic needs, your some surplus income, to invest, to dream, better future for your kids and so on. So India mein today, I want to understand from you, where are we in our ability to generate employment? Are we generating enough jobs for everyone? We are going through a lot of transformations. I think every year, number of people who work in agriculture is falling down. Probably right thing because, the agriculture doesn't need to be as labor intensive as it has always been. I think, and you'll correct my numbers later, I'm pretty sure. But from what I understand, now we have something like around 20, 25 crore people who still work in agriculture, but slowly, slowly declining. But the number of at least formal jobs that are getting created, again, the numbers I understand is between 2 to 3 million every year, but at least 10 million people are coming into a job market every year. So there's a delta. And then, of course, informal jobs and so on. So pehle to maybe you help frame ki how should we look at this whole, development of job opportunities for people at large?
The first thing is, this objective of making sure that incomes are more equitable and that everyone has something to do is much more than just a social necessity. Mm. It's also an economic necessity. Mm. Because more equal societies have much more sustainable growth. Because if you think about it, if you have a billionaire, how much can a billionaire consume? Right. So
we're always surprised. We're looking so
well. Yeah, but on a sustainable basis, it's very hard to do.
Right.
Right. So you can go blow a lot of money in a hotel or whatever. Right. But how much really can you spend? Yeah. And you can buy one yacht to $500 million. But, if you're worth $100 billion, kaha kharch karoge? Whereas if it was, so the marginal propensity to consume, right? Ki matlab agar extra rupiah diya to kharch hoga ki nahi?
Khana utne khaoge, kapde utne pehnoge.
Exactly. So, but agar gareeb aadmi ko aapne thoda zyada paise diye, to zyada acha khayega, zyada acche kapde pehnega, zyada bade ghar mein rahega. So the marginal propensity to consume is much greater. So therefore, it is economically important that we have a more equal society, wealth-wise and income-wise. And both are different issues. Then it's just a... There is a humanitarian aspect of it, and it's a nation-building aspect. In fact, and we'll come to this later on as well. But if you categorize, make a 2x2. I sound like a consultant, but, the 2x2 of, formal worker, informal worker, formal sector, informal sector. So, formal sector, formal worker, our per capita GDP is that of an upper middle income, if not a rich country.
Will that be in the what, $10,000?
No. So that will be in the $15,000.
$15,000. Formal sector, formal jobs.
Formal sector, formal jobs.
And that is, I'm guessing you're talking in the real dollar terms. So purchasing power parity to or PP.
Ha. Exactly. But if you look, the reason why our average per capita income is so low is because we have very large number of sector people working in the informal sector and doing informal jobs, right?
So do you largely agree then this, you know, is as part of nation building, everybody who thinks about it is involved is the country ko jada formal jobs create karne chahiye. Is that a right expectation?
Yeah, it's a right expectation, and this is something that people have been thinking about for the last 30 years.
Right.
So it is not, well, I'm sure longer than that. Right. But so this is not a, it's not rocket science. This is obvious, right? Ki bhai logon ke paas
achhi rocket science ki hone chahiye, kaise karna hai wo rocket science
se. exactly. Yahan ki kaise karna hai, that is the tough ask, right? Ki kaise hoga aur kis tarah ki jobs create karni hongi. So and the challenge is, and exactly as you put it, ki the pace at which people enter the workforce or our the working age population is something that you can't control. मतलब जो 21 साल पहले जन्मे थे वो वर्कफोर्स में आएंगे आप चाहे ना चाहे एंड व्हाट विल हैपन एंड दिस यूज्ड टू हैपन एंड वाज हैपनिंग एंड इट हैज रिवर्स्ड फॉर अ व्हाइल राइट नाउ लास्ट 2-3 इयर्स इज दैट द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग द वर्कफोर्स इज स्मॉलर देन द पीपल जॉइनिंग द आर कमिंग बिकमिंग अ वर्किंग एज पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू यूज 15-64 और 18-64 और व्हाटएवर because more people are getting educated. The percentage of 18 to 25 year olds who are either already graduates or are in college is 4x what was there in 2006. Right? So, which is a good thing.
It's great. Some level.
Yeah. No, so, future ke liye achha hai, investment ho rahi. But that means that they're also not in the working population. Right? So that number is can be smaller than 1 crore because that 1.1 crore jo log bolte hain, वो इसलिए है कि वो केवल वर्किंग एज पॉपुलेशन लेके
चलो रेंज देखते हैं कि व्हाट इज द राइट रेंज टू थिंक
80 लाख के आसपास होने चाहिए मेरे हिसाब से. अभी क्या हुआ है, समहाउ कोविड के बीच में जो PLFS एक होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके हिसाब से वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो इज एक्चुअली स्टार्टेड टू गो अप. सो इट वाज फॉलिंग एंड नाउ इट इज स्टार्टिंग टू गो अप. इसलिए लास्ट 3-4 साल में 1 crore के आसपास लोग 1.1 crore लोग हर साल वर्किंग मतलब हैव wanted to work.
मतलब 1 crore नए लोग, बाकी जो existing तो obviously काफी सारे जिनको नई काम मिलता है.
तो करीब 54-55 crore, 54-55 crore, 540-550 million workers exist.
Right.
And that
out of possible nearly 100 crores, like if your labor force participation देखेंगे आप.
हाँ. तो जैसे if you think about it, इस साल 97 crore voters होंगे. Right. मतलब जो election में. तो 18 के ऊपर कितने लोग हैं, उसमें से कुछ लोग बूढ़े होंगे, उनको आप निकाल दो तो 94-95 लाख, मतलब 94-95 crore होने चाहिए. सो मेरे ख्याल सी एक चीज, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर राइट एट द बिगनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, कि इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन का डेटा जो है वो थोड़ा वेग है. इनफैक्ट मुझे याद है एक बार FRBM रिव्यू कमेटी 2016 में, सो उसमें मुझे बोला गया कि भाई आप इनफॉर्मल सेक्टर पे थोड़ा एक स्टडी करके दें, एंड व्हाट डज दैट मीन इन टर्म्स ऑफ फिस्कल बर्डन एंड ऑल ऑफ दैट, क्या इम्पैक्ट होता है. तो मैंने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और बहुत सारे सोर्सेज थे. मैंने कुछ किया, फिर मुझे लगा कि यार ये 4-5 crore वर्कर दिख ही नहीं रहे. तो आई कॉल्ड अप समवन हु वाज वेरी सीनियर and he's always, you know, helped me with data and statistics. So I said, sir, what am I getting wrong? And he started laughing. He said, ye dekho aise hota hai. Right? So the least count is not a couple of million. It is 4-5 crore log kya karte hain, wo aapko pata nahi. So with that disclaimer, I think if you think about agriculture as well, right? Mere khayal se 21-22 crore log एग्रीकल्चर में.
करेक्ट.
एंड उसमें बहुत कुछ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है,
जैसे टॉप ऑफ दैट कि उनका ही
उनमें इंक्लूडेड है उसमें, क्योंकि जैसे यू मेंशन कि एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स पॉपुलेशन गिर रहा है, एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड इट वेंट अप.
वो माइग्रेटेड लेबर सब वापस चले गए
थे, एंड सो उनसे पूछोगे क्या करते हैं, किसान है, हम घर में बैठे. सो एंड ऑफ दैट 21-22, अबाउट हाफ आर लैंडलेस वर्कर्स. राइट, तो वो असली काम करते हैं क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं,
करेक्ट,
500 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया
राइट
दिन का मिलता है. बाकी के जो 11 करोड़ लोग हैं वो उनके पास सब्सिस्टेंस फार्म्स हैं, और एक्चुअली कुछ लोगों के पास बिलो सब्सिस्टेंस फार्म्स हैं. द नंबर ऑफ फार्मर्स विथ मार्केटेबल सरप्लसेस इज मोर इन द 3-4 करोड़ रेंज. तो ये जो 20-22 करोड़ लोग जो कहते हैं कि हम लोग, हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, उसमें से 3-4 करोड़ ही है जो लैंड ओनिंग, और इतना लैंड है कि साल का बेचने लायक कुछ उपजता है. ठीक है, नाउ सो इट्स अ वेरी स्मॉल सेटअप उसके लिए. और जो बाकी के जो हैं वो बस कि वहाँ हो रहा है खेती हो रही है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन फार्मिंग. सो व्हेन यू थिंक अबाउट से नॉट अ 22 करोड़ और अ 10 करोड़ नंबर, राइट, द नंबर ऑफ पीपल दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट जॉब्स फॉर इंक्रीजेज इवन मोर. The second is that your female labor force participation rate is very low.
Correct.
You want to get more women into the workforce. So, if you, I think we had discussed this earlier, if you can get everyone who should be in the workforce and suitably employed, our GDP growth will be in the
mid-teens. What are the benchmarks? So, roughly, let's assume, let's go with those numbers. And I'm out of it, I understand that kisi ko bhi exact numbers nahi pata hai, but directionally, let's say 1995 crores is potentially working age population. And currently, achha job, bura job, 54 crore peoples are employed. So, kitna hua? Roughly 55-60% ke beech mein participation ho gaya. What is the ideal? Like, it's not like 100% kabhi nahi hoga. What is the benchmark? Like, you know, assuming if there's a magic wand.
Usme se kuch log college jayenge. It's not that, you know, everyone can work.
Right.
So, US is at about a 65% right. kind of a participation rate.
Right. So, okay, macro level 10% ka delta hai.
Yes.
On top of that, now ye 54 crore, usme itself ki the quality of jobs may be a bigger problem.
Correct. So, so agriculture though almost by definition is 100% informal. Right. Usme koi bhi guarantee of income aur ye sab nahi hai.
Right.
Dihari ki mazdoori hai ya phir kheti mein jo aap risk le rahe hain, so le rahe hain. Of the about 31-32, let's say 30 crore round figure, mere hisab se 9 crore ke aaspaas formal worker hain, baki 21-22 crore jo hain informal worker hain. Yani ki they do not have any social safety net, they don't have any certainty of income, there are no wages,
right,
and many of them are actually self-employed. So this is data that thankfully the CSO does provide, which is that of India's total household income, right, 40% is wages. 35% is what is known as surpluses from own account enterprises.
Jo dukaan chalate hain, tech.
Dukaan chalate hain, dhaba chalate hain, taxi chalate hain, tuk-tuk chalate hain, whatever, right? So, jugaad chalate hain. So this is a very large number. So when we think about ki are India ka wage growth kya hai, are bhai wage growth jo hai wo is only 40, wages are only 40% of household income,
right?
So one of the reasons that low end consumption post COVID is still weak is that the surpluses of those own account enterprises which had depleted significantly during COVID, ab dukaan hi band hai, tu khayega kya,
right?
या अगर मतलब ट्रैवल करके, या मतलब कोई जो चाय की दुकान वाला है या रोड साइड ढाबा वाला, दुकान ही नहीं चल रही. सो या लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो जो दर्जी जो 25-30 रुपए में स्कूल यूनिफॉर्म बनाता है उसको पैसे ही नहीं बने. सो दिस इज़ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट? सो वी नीड टू आई थिंक ओवर टाइम माइग्रेट दीज, एंड सम ऑफ दीज विल ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन विल बी अ slow pace of change. Right.
But I mean, and Anil Trentino, you have talked about this publicly, right? This whole thing that you say that India needs to get rich before it gets old.
Mm-hmm.
I think the statistic that you quote is by today our median age is, I think, 28. Median or average?
Median.
Median, right? And wo same 2053 mein 40 ho jayega, which is where China is today. To wo 30 saal ki window hai. Now this societal change, agar wo slow gradual pace pe hoga, तो बहुत सारे लोग तो बिना इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए बिना उस एज के पार पहुंच जाएंगे.
अग्री. सो दैट इज अ चैलेंज एंड दैट्स अ चैलेंज दैट वी नीड टू एड्रेस. रिमेंबर दैट जो अभी 35-40 साल के हो गए या हो गई, I mean, I don't want to dismiss because I mean, I'm older than that and I would still think that I can change myself and, you know, do something productive.
Oh, your time was sad.
I know. but it's very hard to get them into the workforce in terms of the mindset, in terms of, you know, the skills to learn.
Right.
Like, you know, to learn how to learn. You know, so all of those things are very hard to change. But what we can do is that the girl or the boy who's going to be 25 in 2047 is, you know, today 3 or 4 years old. So how can we increase school enrollments? How can we make sure that they're getting the right nutrition? And so all of those things become very important.
Yeah.
Because remember, self-employment mein kya kharab hai? Right? It may not be formal employment, as you call it, but so long as it is value added, there's nothing wrong in it. Right? I mean, finally, there was a phase, and I think that phase is not gone fully, where people said gig workers are the future, right? That you don't have to work in large firms.
Right.
So so I don't see that as a huge challenge. The only challenge that I think we need to be cognizant of is that are we, I mean, from a human development perspective, that, you know, are they getting, in the first 5 years when the brains are developing, are they getting the right nutrition? And then from the age of 5 to 18, as their skills are getting developed, as their bodies are getting developed, are we sort of preparing them for the better
world? But yahan pe, you know, major wo catch 22 bhi hai ki what's holding a lot of these people back, is it lack of nutrition, lack of education skills, or is it lack of jobs? Like, you know, which is the chicken and egg here?
Dekho, jobs ke baare mein, and I know this is where perhaps my not being a formally trained economist is something makes me think very, very differently. If you think about the world in the last, say, 100 years, right? Human population has grown many times.
Yeah, 4 times, right? 2 billion to 8 billion.
Correct. Now, aisa toh hai nahi ki humne Mars mein export karna shuru kar diya hai ya Venus se import karna shuru kar diya hai, right? Finally, Earth ke beech mein hi ho raha hai, kuch bhi aise ho raha hai. So we have just made sure that, you know, just like containerization hua, disaggregation of goods value chains hua, disaggregation of services value chains ho raha hai. We have learned to solve health problems. Mm-hmm. We've created new types of jobs, right? So, and jobs are what? Matlab, see, finally, har aadmi ko, jaise, we go back to, you know, 50,000 years ago, right? Even before tribes were formed. Finally, you have to protect yourself. Kapde chahiye, khana chahiye, aur rehne ki jagah chahiye, right? So that's all you need. Roti, kapda, makan, right? Finally, boy, life, everything else is a plus plus in terms of how humans are structured. So all of the things we do are in providing goods, roti, kapda, makan to each other.
Correct.
So we have to create. So there is some global competition in the sense that we have to understand how do we sort of compete in export markets for goods and services and all that. And what economies do is that they grow initially by matlab thoda income badhate hain aur fir jab domestic income hi badh jati hai usse bhi baki log bhi. So it's a very, that you tap into external demand, so you become competitive, and so that is something that we need to do, right? So in global goods and services, we definitely need to become more competitive. What then happens is, so for example, you know, If a global consulting firm is 100,000 people in India, 70,000 are working for the US firm, right? And and 30,000 are working for India. And the average billing rate is $52,000 a year,
right?
Yani ki wo 25 lakh rupees ki naukri generate kar raha hai. To wo, agar wo koi 25 lakh saal ka agar koi kama raha hai, wo bada ghar chahiye, bachche ko padhane ke liye koi log chahiye, wo खाने का चाहिए, कपड़े चाहिए, उससे पूरी डिमांड क्रिएट हो जाती है. सो वन इज दैट यू टैप इनटू द एक्सटर्नल डिमांड, सो यू स्टार्ट बिकमिंग बिगर एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स एंड यू बिकम बिगर एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज. एंड द सेकंड इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एपिसोड, व्हिच इज हाउ डू यू ब्रिंग डाउन यूनिट कॉस्ट्स सो दैट न्यू टाइप्स ऑफ सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन.
राइट. तो लेट्स ब्रेक इट डाउन सेक्टर वाइज. आई थिंक एग्रीकल्चर में तो इट्स इनएविटेबल कि अभी अगर 21-22 करोड़ काम करते हैं एज यू सेड कि रियली तो लॉट ऑफ सरप्लस जनरेशन वाले तो 4-5 करोड़ ही हैं. बट जो भी वो नंबर है वो तो कम होगा ही. वो मतलब ऑटोमेशन आ रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है एंड सो ऑन, वो बढ़ेगा तो नहीं. देन द अदर बिग सेक्टर्स आर यू नो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन. सो मैन्युफैक्चरिंग में अगेन डेटा दैट आई एम लुकिंग एट कि करीब 6 करोड़ जॉब्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, कंपेयर टू चाइना में 165 मिलियन, तो कितना 16-17 करोड़ हो गए. एंड विच हैज़ बिन बिग पार्ट ऑफ एटलीस्ट चाइना स्टोरी, लाइक यू नो दे रियली बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ओवर लास्ट 30 ईयर्स. एंड इन द प्रोसेस लॉट ऑफ माइग्रेशन हैपन्ड फ्रॉम द स्मॉलर टाउन रूरल एरियाज टू दिस थिंग.
बट सी दिस इज वेयर आई थिंक यू सो यू हैव टू थिंक अबाउट वॉट इज मैन्युफैक्चरिंग, राइट? सो एंड सी चाइना से कंपेरिजन एक है, वी विल गेट टू दैट.
आई थिंक माई पॉइंट इज ऑल्सो जस्ट टू यू नो फिनिश दैट कि is manufacturing likely to play a big role? Is that a sector which has to eventually employ?
I want to go deeper than that before we answer that question, right? Because har kisi ko manufacturing lagta hai badi badi factory.
Acha, samajh gaya. To cottage level bhi ho sakte hai, cottage
manufacturing. No, not cottage. What is it that we manufacture? Just think about it. So once you think about that, things start becoming clearer.
Okay.
So for example, a very large part of India's manufacturing is apparel and textiles.
Right, theek hai.
राइट, वो मोजे बनाने से लेके वो 150 रुपये की स्वेटर जो दिल्ली के हल्का बाजार में मिलती है, मतलब उस तरह से. सो दैट्स अ वेरी लार्ज सेट ऑफ जॉब्स, राइट? नाउ इन ऑर्डर फॉर अस टू कम्पीट ग्लोबली वी नीड टू ऑटोमेट, वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स, बट दैट्स वन वेरी लार्ज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंड वेरी लार्ज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज फूड, राइट? सो वॉट स्टार्ट्स टू हैपन इफ यू थिंक अबाउट द परसेंटेज ऑफ calories that you used to take when you were a child, which were cooked outside, versus what you eat now, right? And think about how specialization has happened, in the sense that koi aisa hai to ya to packaged food ya food cooked, matlab in a, you know,
very interesting with stats always ke bare mein ki wo personal calorie outside versus in house kaise kitna change hua hai kuch.
I used to know this, mujhe abhi yaad nahi hai. But look, but you know, you see, if agar 2,100 calorie per capita, agar, you know, average consumption hai, I would say 20-25% would be currently cooked outside, which includes packaged foods. And the reason I say that 46% of CPI, consumer price index, is food. उसमें से मेरे ख्याल से प्रोसेस्ड फूड इज अबाउट 6-6.5%. आई थिंक रेस्टोरेंट्स थोड़ा ज़्यादा होगा,
समझ गया.
तो उसको मैं जोड़ जाड़ के और उसमें क्या है कि एक्सटर्नल कैलोरीज आर मोर एक्सपेंसिव, एटलीस्ट रेस्टोरेंट वाली,
राइट?
और जो पैकेज फूड प्रोसेस्ड फूड है, दैट्स एक्चुअली चीपर. चीपेस्ट फॉर्म ऑफ कैलोरीज टुडे इज मे बी अ पार्ले जी बिस्किट एंड अ मैगी नूडल्स, राइट? व्हिच इज अनहेल्दी,
न्यूट्रिशन वैल्यू आल्सो,
एग्जैक्टली. बट इट इज एक्चुअली ऑन अ इंजेस्टेड कैलोरी बेसिस. Those are much cheaper, which is why we are getting to see some of these problems, right? Right. Oh, health problems,
correct,
and all of that.
Right.
But anyway,
so 30-40 साल पहले तो almost negligible होगा ये, कम होगा, lows. अभी 20-25% we'll look it up also later. समझ गया.
So what happens is that there you are then getting specialization. जैसे अगर जैसे हमारी दादी को लगता था कि अरे सब्जी तो अपने बगाने खानी चाहिए, right? Which is great, right? But is that the best, most productive use of your time? Right. I mean, it's good to have fresh vegetables and all that, but samay kitna lagta hai, right? And so as people start specializing, ki wo jaise wo ek ekad zameen mein wo 6 lakh rupaye ki sabzi uga sakte hain, right? Kuch farmers hote hain, to bhai achhi baat hai, sabko sasti sabzi milegi,
correct?
Waise hi agar koi jaise dharabi mein baith ke wo chips, jaise hamari mother bhi bahut badhiya पोटेटो चिप्स बनाती हैं, वो जब आती हैं तो हमारे सबको जो है वो दादी बनाओ बनाओ. बट इफ यू लुक एट इट ऑन अ कॉस्ट बेसिस, इट इज मच चीपर टू गेट इट डन इन धारावी एंड पैकेज इन दोस डर्टी प्लास्टिक थिंग्स एंड देन ईट, राइट? सो द पॉइंट इज दैट स्पेशलाइजेशन नीड्स टू हैपन. नाउ आर यू अलाउिंग, सो वी आर गेटिंग बैक टू द जॉब क्रिएशन क्वेश्चन, आर यू अलाउिंग फॉर दैट स्पेशलाइजेशन टू हैपन? एंड इज दैट स्पेशलाइजेशन, सो व्हाट डू यू नीड फॉर दैट टू हैपन? सो यू नीड टू ईज कि अगर किसी को कंपनी बना के करना है तो आपको कंपनी बनाने में फ्रिक्शन है क्या. अगर जब आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको एनर्जी एक्सेस एफिशिएंटली मिल रहा है कि नहीं. आपको जैसे आपको पकाने, कुकिंग इज अबाउट एनर्जी ओनली ना, तो आपको अगर बिजली बहुत महंगी मिल रही है तो आप नहीं बनाएंगे. क्योंकि अगर आपने हाउस होल्ड को एनर्जी सब्सिडाइज की हुई है और इंडस्ट्री को महंगा किया हुआ है, आप हाउस होल्ड को 3 रुपये में दे रहे हो, वहाँ पे 10 रुपये में दे रहे हो, तो कोई बाहर बनाएगा ही नहीं. सो आर यू क्रिएटिंग यू नो फ्रीयर एनर्जी मार्केट्स, आर यू मेकिंग इट ईजी. जैसे वो इन्फॉर्मल बैठ के छोटा छोटा बना रहा है, इफ़ यू आस्क एंड देयर बीन सर्वेज कंडक्टेड कि भाई आप इन्फॉर्मल क्यों हैं, राइट, या आपने बिकॉज सी बियॉन्ड अ सर्टन स्केल यू नीड फॉर्मल फंडिंग, तब तो आप मशीन लगाएंगे.
इन्फॉर्मल को समझा भी देते हैं कि एग्जैक्टली इन्फॉर्मल का मतलब क्या होता है.
इन्फॉर्मल का मतलब है कि आपने कोई आप बस
रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कोई शॉप
नहीं किया,
शॉप नहीं, टैक्स भी नहीं पे कर रहे हो,
टैक्स तो नहीं पे कर रहे हो, मतलब तो है ही नहीं. बट हाँ, आपने ना फैक्ट्रीज एक्ट का रजिस्टर किया है, ना शॉप शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में किया है, एंड क्योंकि आपने नहीं किया है तो आप एक लेवल के बियॉन्ड स्केल ही नहीं कर सकते. और जब आप उस लेवल के बियॉन्ड स्केल नहीं कर सकते तो आप मशीन ही नहीं लगा सकते, या एक सी देर इज
इकॉनमी ले सकते हो बैंक से.
हाँ, और इकॉनमी ऑफ स्केल होती है ना कि आप एक ही चीज़ को आप जैसे 10 लोग बैठ के वो अच्छे से बनाएंगे, तो वो ऑब्वियसली फ्रॉम समवन लर्निंग द स्किल फ्रॉम चाइल्डहुड एंड देन कुकिंग एंड देन यूजिंग द बेस्ट टाइम. सी, इफ एवरीवन इज स्पेंडिंग से 2 आवर्स कुकिंग एवरी डे एंड डूइंग इट इनएफिशिएंटली वर्सेस मशीन्स एंड सम पीपल डूइंग इट एंड इन अ हेल्दी मैनर बीइंग एबल टू ट्रांसफर, दैट इज वेयर प्रोडक्टिविटी कम्स इन.
समझ गया. तो वन पॉइंट यू आर मेकिंग कि मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट ओनली मीन दिस मल्टी यू नो $100 million फैक्ट्रीज, बट वेरी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट विच में 5 to 50 पीपल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट.
इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्पोनेंट. आई मीन 70-80% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द US इज MSMEs.
और उसको फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिसी लेवल पे काफ़ी चीज हो सकती है इस वक्त.
वो क्या होता है, जो छोटा बाबू है जिसको कि वो सर्टिफिकेशन देना है, उन्हें क्यों दे भाई, घूस दीजिए, राइट. एंड वो घूस देने के उसके पैसे नहीं है, या इरिटेशन है, या वो उसको गुस्सा आ गया और नहीं जाएंगे लाइसेंस, एंड देन यू रिमेन स्मॉल. सो हाउ कैन यू ईज दिस लाइक फ्रिक्शनल प्रोसेसेस. तो एक सवाल उसमें सोल्यूशन निकलता है कि भाई सब कुछ ऑनलाइन कर दो. उसमें भी खैर लोग उसमें पेज निकाल लेते हैं, बट पॉइंट इज दैट इन ऑर्डर फॉर दीज बिजनेसेस टू ग्रो एंड नॉट गेट स्टक. इनफैक्ट क्या हुआ था, जैसे जब फैक्ट्रीज एक्ट में ये था कि अगर आपकी फैक्ट्री में 10 से ज़्यादा वर्कर हैं तो आपको फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर मतलब नहीं 19 और अगर नहीं सॉरी, इफ़ इट इज़ मेकनाइज्ड देन इट इज़ 10, इफ़ इट इज़ नॉन मेकनाइज्ड देन 20. तो एज यू कैन इमेजिन देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स विद 9 पीपल एंड देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद 19 पीपल, विच टेल्स यू कि जो इट वॉज द रेगुलेशन विच वॉज स्टॉपिंग द फॉर्म्स फ्रॉम स्केलिंग आउट. एंड सो द फर्स्ट थिंग दैट रेगुलेशन हैज टू डू इज टू स्टॉप दैट.
समझ गया. एंड लुक, देखो, देर इज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन इंडिया, राइटली सो. लॉट ऑफ मेजर रिफॉर्म्स एंड इनेबलमेंट हैज हैपेंड, एज वी वांट डिस्कस इंडिया स्टैक ऑल्सो हैज बीन अ ह्यूज इनेबलर. तो ये जो एरिया है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे काम हो रहा है, शुड बी ऑप्टिमिस्टिक अगले 5 साल में इक्वेशन काफी चेंज हो सकती है, लाइक व्हाट विजिबिलिटी डू यू हैव और
नो आई डू थिंक दैट दिस थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन. इट इज आल्सो आई थिंक रीजनेबल टू थिंक दैट थिंग्स विल नॉट मूव एज फास्ट एज वी वुड लाइक इट टू, विच इज वाई वी आर गोइंग टू कीप ग्रोइंग एट 7% प्लस बट नॉट एट 8-9%, विच इज बिकॉज you know, so even 10 years later, if we keep growing at 7, we'll still remain a lower middle income economy. And we'll have all the warts and the problems of some local babu and just saying, bhai, bhai, hum to raja hain, aapko jo karna hai, kar lo. And you know, cleaning up municipal governments, which give out these licenses, or for the state governments to wake up and say, bhai, just getting large companies to invest in your setup is not enough, right? So if you open up or you ease how small businesses and small factories grow and develop, the number of jobs you can create are phenomenal. Because see, that is how productivity changes.
Devo, see, I have the benefit of neither being an economist nor being a policy person, so I can ask very naive questions. अब जैसे कंपनी में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हो रहा होता है, बोलते हैं यार ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या बॉटल ने क्या है। तो यहाँ पे इफ़ यू बिलीव कि फास्टर पॉलिसी इनेबलमेंट कैन यू नो अनलॉक लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एट यू नो ग्रास रूट्स लेवल विच कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट GDP, वो धीरे क्यों होगा। लाइक आई मीन कंट्री हैज़ डन लॉट ऑफ रिफॉर्म्स एट ए वेरी यू नो ब्रेक नेक पेस ऑल्सो।
7% पे ग्रो भी तो कर रहे हैं ना।
नहीं, हाँ वो कर रहे हैं, बट आई मीन समवेयर यू डू थिंक कि 8-9 भी पॉसिबल है।
हाँ,
और मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक पॉइंट ऑफ टूडेज डिस्कशन इज कि यार ज़्यादा लोगों को जॉब होगा, सबके लिए अच्छा होगा।
नहीं, सो इफ यू टेक द सो टेक स्नैपशॉट एंड देन वी विल फिगर आउट द पाथ, राइट? सो यू टेक अ स्नैपशॉट कि इंडिया इन 2047 और 53 इज अ डेवलप्ड कंट्री।
यस।
एंड सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, राइट? तो उस समय व्हाट इज द लेबर एलोकेशन टू वेरियस सेक्टर्स एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑटोमेशन इन एवरी सेक्टर, व्हाट्स द प्रोडक्टिविटी इन एवरी सेक्टर, राइट? एंड सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट एंड यू से दैट लुक when that happens, you will actually be seeing a lot fewer people in farming because farming will be reasonably well automated. You don't need so many people sort of, you know, having small flocks of chicken or sheep or cows and small tracts of land, much more automation. You should see a lot more of services. India should be providing very high value add services. So when you look at those snapshots and then you figure out ki bhai wahan jaane ke liye kya karna hoga. The first thing is you need a lot of capital.
Yeah.
Right? So are we getting enough capital? Are we not just getting enough capital from outside? Are we creating channels? And this is what we discussed in the first episode, if you remember, of giving it in the right size to the right people. Right? So how are those channels being created? And so like, you know, the account aggregator model for lending, a very, very diversified and locally available venture capital system for equity. So wo capital availability hogi. Second is that are you allowing businesses to grow without friction? Jaise two friends of mine recently started their own fund, right? Now, wo abhi registration ka wait kar rahe hain. Now, of course, they are restless. You go shuru karna hai ki 2 mahine. Now, abhi to chaliye 2-3 mahine mein ho jata hai. Ab agar usme 2 saal laga denge aap, to aadhe log to fund hi shuru nahi karenge. So there are regulatory barriers to it, which people don't appreciate are actually a very big barrier, right? So are we easing some of those things? If someone wants tax certainty, like, you know, how much time today is an organization spending in just making sure that the documents are in the right place or sorting out tax issues or worrying about tax issues, right? And so can you give that clarity? And the moment you start doing that, it becomes, it's in everyone, or it's in the firm's interest and therefore the society's interest and the economy's interest that productivity starts to go up. And these firms will specialize in something. Koi trading mein specialize karega, koi manufacturing mein specialize karega, koi healthcare mein specialize karega. And then the cost of that service or good starts to fall. It becomes much more affordable to more people.
Right.
And they start consuming more of it. Now, you know, someone in Hindustan Unilever was telling me that 1 rupee clinic plus shampoo sachet, there is 2,500 crore of them sold every year. Wow. Right? Now, if you did not have that, to utna shampoo nahi hota, na unko itna income hoti. So, you have to, you know, create and to, there is a chicken and egg problem. Jab income nahi hai, to consume kaise karega? Consume nahi karega, to produce kaise karega? The way to solve this is, one, to export and generate the income so that demand gets created. And the second is to bring down unit costs, just like we did with UPI, and then make it much more affordable.
Right. I'm still wondering, you know, this whole, I mean, that's, I did not think of that way. Like this whole idea of, you know, manufacturing, bahut sare question puchne wala tha, but mera wahi hota hai ki wo factory ko enable karne ke liye kya kya kar rahe hain. But now that you have brought to this point, ki, you know, micro enterprises can play a massive role. तो उसको इनेबलमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए इट्स कब और कैसे, यू नो आई एम श्योर काम तो हो ही रहा होगा ऑब्वियसली, यू नो द गवर्नमेंट इज वेरी प्रोग्रेसिव,
बोथ थिंग्स हैव टू बी डन. सो नाउ, सो हाउ टू डू इट, राइट? सो द फर्स्ट इज दैट यू बी इन द राइट सेक्टर्स, राइट? सो एंड सो देयर इज एन एक्सपोर्ट स्टोरी एंड देयर इज अ डोमेस्टिक स्टोरी, राइट? सो यू कैन डू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आल्सो इन अ वे. बट अब जैसे ईंटें बनानी है, राइट? अब जैसे इतने सारे घर बनेंगे, रोटी कपड़ा मकान में हाउसिंग इज द बिगेस्ट स्पेंड,
राइट?
सो वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट दैट
कंस्ट्रक्शन सेम एज मैन्युफैक्चरिंग अगेन आई डोंट नो इज अ मैक्रो डेटा 6-6 crore दोनों में लोग
एंड सो कंस्ट्रक्शन इनफैक्ट दिस इज द डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन लेबर बट इफ यू लुक एट कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स ऑल्सो देर इज मच मोर लाइक इन अ वेरी रीजनेबल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ब्रिक मेकिंग
समझ गया
तो सो और यू नो वुड पैनल्स बिकॉज यू थिंक अबाउट यू नो डिमांड अगर एक फैमिली रोटी कपड़ा में जो साल का खर्च करती है उसको अगर आप 30 साल के लिए कर दो मुना कर दो राइट एक मतलब यू नो बिकॉज उसके बाद तो बच्चे बड़े बाहर चले जाएंगे उसके बाद तो एनी वे द एक्सपेंडिचर ड्रॉप्स एंड यू कंपेयर दैट कि वो एक घर खरीदने में कितना पैसा खर्च करते हैं घर खरीदने का खर्चा बम्बई नहीं हर शहर में it'll be much more than what you do on roti and kapda. So, but if you, I went and I remember asking someone very senior in the MP government, ki aapke yahan kitne brick kilns hain? He had no idea. And eent ke bhatte hue hain. Aur usme agar aap, wo sab illegal hoti hain.
Aur sab chote setup hote hain.
Wo chote setup hote hain. Usme productivity nahi hai. Jab productivity nahi hai, to eent mehengi ho jati hai. Jab eent mehengi hoti hai, to log ghar kam banate hain. But, आपने उसको फॉर्मलाइज करके अच्छा उसमें क्या है कि वही वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सैंड माफिया है वो उसमें जो कोल का स्मगलिंग वाला माफिया है तो उन सबको अब करने के लिए आपको इन्फॉर्म लगना वो आई मीन आई वाज शॉक्ड ही सेड 8 या 9 भट्टी हैं जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं पूरे मध्य प्रदेश 2013 की बात बता रहा
हूँ
बिकॉज यू ट्रैवल अराउंड ना गाँव में आप ट्रैवल करो
सब जगह दिखती है
क्योंकि सबको घर बनाने
अभी मेरे को याद आ रहा है मैं जहाँ पे रहता था मेरे घर के आसपास ही 3-4 थे
एंड जैसे इफ यू थिंक भैया जो 6 crore के का जो नंबर है 2012 सी तक अगेन प्रॉब्लम इज कि वो जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे जो NSSO करता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन तो वो 2012 में लास्ट हुआ था तो डेटा इज वेरी आउटडेटेड बट उसके हिसाब से 60% ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब्स वर इन रूरल हाउसिंग राइट सो बिकॉज सी अगर 67-68% उस समय तो 11 सेंसस में तो यही था इफ 69% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन रूरल एरिया
घर से वहाँ पे और वहाँ
तो और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इज अ लॉट लेस ऑटोमेटेड
करेक्ट
राइट वो तो सर पे उठाओ और जाके वहाँ एक एक करके ईंट लगाओ तो सो इफ यू कैन सो अभी तो क्या चलिए सबके पक्के घर हो गए बट वो घर का क्वालिटी इंप्रूव हो सकता है right and if the quality of the house improves so much money so much time is saved I mean you know I guess even you wouldn't have lived in a house with a mud floor but was it very hard to maintain right imagine ki usme se kide nikalte rehte hain to aapko har ek hafte mein jaake wo gobar ka wo putna hoga Whereas, एक बार सीमेंटेड फ्लोर आ गया झाड़ू लगा दो ठीक हो जाता है झाड़ू लगाना इज एन एफर्ट बिकॉज दैट्स हाउ वी ग्रो अप बट यू नो इमेजिन नॉट हैविंग दैट सो एंड हैविंग अ यू नो वॉल विद नो इंसुलेशन इमेजिन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सो यू नो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी एट दैट लेवल अ लॉट ऑफ द सोल्यूशंस बिकम वेरी ऑब्वियस दैट डज नॉट मीन दैट वील बी एबल टू सॉल्व देम बट एटलीस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बिकम्स क्लियर
समझ गया गॉट इट सो एंड मे बी लेट्स कवर द अदर एस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच इज मच लार्जर सेटअप बिकॉज दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन यू नो इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड सो ऑन
एंड दे बिकम लाइक द एयरक्राफ्ट कैरियर्स विच सपोर्ट अ होल फ्लोटिला
राइट एग्जैक्टली उनके सप्लायर होंगे पार्ट सप्लायर एंड सो ऑन तो वेयर आर वी ऑन दैट बिकॉज लाइक दिस मेक इन इंडिया हैज बीन यू नो बिग कैंपेन फ्रॉम द अगेन फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड lot of green shoots lot of investment is happening even things like in, you know people are setting up semiconductor fabs in india iphone manufacturing is happening in india at a very big scale so where are we headed in that and is it reason to believe that in next 5 to 10 years will generate substantial number of this large scale manufacturing jobs in india
yeah so As with most things in India, I mean, it's a mixed bag, right? So, I think in some we are making giant strides.
Okay.
In others, we can do better.
Okay.
Right. So, so clearly, as you said, in electronics assembly, we have come a long way. There's a very still a long way to go. So in a 6 trillion dollar ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ राउंड ट्रिपिंग ऑफ सर्कुलर ट्रेडिंग में थोड़ा सा वैल्यू एड होके तो इज अ डबल काउंटिंग देयर नॉट सर्कुलर ट्रेडिंग डबल काउंटिंग देयर
श्योर
India's numbers are still less than $25 million. I mean, maybe $25 million, right? So it's something that has enormous scope to grow, but the growth numbers are astounding.
No, it's just $25 billion of export in a $6 trillion global electronics exports.
Yeah, so it was made definitions ka hai, jaise HS code 84-85. This is about the export numbers. So, usme machinery and electronics dono included hai 84-85. Un dono codes mein. इंडिया का लास्ट फिस्कल ईयर का नंबर जो है वो मेरे ख्याल से $23-24 billion था. वी आर मोस्टली एब्सेंट. द एम्बिशन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक इट $130 billion बाय 26, बट आई थिंक कोविड के कारण एक दो साल से इधर उधर हो गया 28. तो मतलब अगले 3-4 साल में वो नंबर जो है वो 4-5x होने वाला है. एंड मोस्ट पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दिस इंडस्ट्री दे से कि हो जाएगा. Right, the direction of travel is and investments are happening and all. So, and it's a very important step. So, once that happens, to shuru mein lagega ki are isme to 10-15% value add hai. Right? To kya ho gaya? But jaise hi wo banna shuru hota hai, to wo aas-paas ke jo immediate jo some component supplier hai, unki factory aani shuru hogi. Phir usme bahut sare jobs create hoge. So, I think that process is on. Semiconductors, I must say, given where we are now, it is, while we are making, I think we've made astounding progress in the last 1.5 years, is still a long way to go. Compared to worrying whether anyone will ever invest in India, to now getting a lot of good proposals, very exciting. I mean, I'm actually involved in some of these processes, and I'm like almost jumping with joy as to how much progress we've made. But yeah, still a long way to go. But still, we have to be pragmatic that this is not a labor-intensive industry. Neither is it something that even in an upstream basis creates a lot of jobs. So it will require water and gases and a lot of other things, but it's something which is required from a geopolitical, geostrategic perspective. Right. But yeah, electronics, I think we've done a great job. I think where we need to do a much better job is apparel, footwear, and food products.
And food ka mere ko nahi pata, but apparel, footwear, it seems like we've lost some jobs as well. I think Vietnam, Bangladesh.
We've not lost jobs. So if you look at India's share, it's actually flattened. But
maybe they have benefited from China job moving out.
China ka one log aise gira hai. To un logon ka aise gaya hai, humare flat hai. So we have not benefited from it. Some of it is regulation, like say Bangladesh hai. So Bangladesh, I think to their credit, they have taken advantage of the constraints. And so, you know, it's like winning a match, right? Ki wo बारिश हो गई नहीं हुई मतलब मैच तो जीते ना पॉइंट सो जीत गए वो लोग लेकिन लुक एट द एनवायरनमेंट राइट सो 80% प्लस ऑफ देयर एक्सपोर्ट इज अपैरल सो इट्स नॉट दैट यू अपैरल के अलावा कहीं कुछ उन्होंने कुछ महान काम किया है दूसरा अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ दिस अपैरल एक्सपोर्ट्स इज कॉटन अपैरल एंड विद इन दैट लार्ज कॉटन अपैरल 75% इज यूरोप वेयर दे हैव अ टैक्स एडवांटेज बिकॉज़ वो LDC लेस डेवलप्ड कंट्रीज
वन ट्रिक पोनी.
Yeah, so I don't want to dismiss a whole country like that, but when I look at the numbers, I mean, I sense that now that their per capita incomes have grown, and now that they're going to start losing that.
So to their credit, they identified one thing and they played it to the hilt.
Yes,
but it's not transferable to other.
Yeah, areas. So it is. There are not a lot of lessons that you can get out of their success
there.
But Vietnam has played it well, right? So Vietnam has also benefited from being right next to China.
Right.
Because then the supply chains become shorter. So lots of challenges in textile and footwear and apparel and footwear, especially on the non-cotton side, right? So artificial fabric mein, we have not done well at all. There are many explanations, and if you're interested, we can discuss that, but it's something that we need to get right. I think food processing and agricultural exports are another area where we should be doing a lot more than what we are doing now.
So, ये तो जो 20-22 करोड़ लोग agriculture में हैं, assume like just fantasizing कि instead of just raw material production, some of it transfers into food processing and
or do flowers. I mean, in the Dutch. given their cost, can you imagine, are dominant in so many different parts of, you know, fruits and flowers. And with our cost of production, we are struggling. Now, there are areas where we are starting to make giant strides, like bananas. I think in the last 3-4 years, we have phenomenal progress, right? In terms of, you know, capturing markets, creating supplies. There was a, I mean, I think in poultry, we are doing well. I think in fisheries, we are doing very well. So we are starting to solve that problem. And there are things which we do which are shocking, which is that 90% of deep sea fishing in India's not maritime zone, but, you know, it's not within our zone, but, you know, like Indian Ocean, is not done by India. So we don't have capabilities.
Right. But those are opportunities as well.
So when you are at $2,600 per capita, there are lots of opportunity.
Right.
But we have not acted on them.
Okay, let's talk about services, because in the end, bulk of the job creation has to happen there. That's how, I mean, maybe China might have been exception, but most countries, as they develop, you know, manufacturing mein, automation mein kafi had tak aa jata hai, and so on. But services has to consume the, you know, largest number of jobs. So where are...
China is also an exception. So you're absolutely right. I mean, I have no disagreement. I'll just add on to that argument by saying that China is also indulged in systematic financial repression to enable their dominance of global goods supply chain.
Financial repression of who?
Of Chinese.
Okay, explain.
In fact, just so that people don't think that this is a more recent occurrence, the first noted instance of financial repression in China is during the Tang Dynasty.
Purani problem.
Anyway, so how do they do it, right? So the fact is, कि आपकी पॉलिसी में है कि भाई एफडी के अलावा मतलब या बैंक डिपॉजिट्स के अलावा आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट का साधन नहीं है. तो अब क्या होता है कि पूरे पूरी बैंकिंग सिस्टम को 2% पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
वेरी चीप कैपिटल एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल्स वेल्थ नॉट ग्रोइंग.
हाँ, तो वो आपने आप कुछ भी कमाएं, अगर आपकी सेविंग है तो और सोशल सेफ्टी नेट नहीं है. पेंशन एसेट्स इन चाइना एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आर लोअर देन दैट ऑफ इंडिया. तो अगर आप 50 साल के हैं, आप खर्च भी नहीं, सी यू कैन से कि यार 2% डिपॉजिट खर्च कर लेते हैं वो लोग, उन्होंने जानबूझ के सोशल सेफ्टी नेट नहीं बनाया. अब जानबूझ के बनाया कि नहीं पता नहीं, लेट मी नॉट डिस्क्राइब इट टेंशंस, बट नहीं है. तो अब क्या है कि आप 50 साल के हैं, आपको 10 साल में रिटायरमेंट आ रही है, एक्चुअली 58 में रिटायरमेंट है, दे नॉट इवन रेज दैट. तो आप पैसे बचाओगे, उसमें रिटर्न ही नहीं है. और होता क्या है कि फिर आपने 2% डिपॉजिट ले लिया, तो अब आपके बैंक जो है 6% पे लोन देंगे, तो सस्ता हो गया. ग्लोबली हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक, राइट, जैसे नो व्हेन द डच स्टार्टेड टू बीट द ब्रिटिश इन द 17th सेंचुरी व्हेन बोथ कंट्रीज वर कंपीटिंग, एक्चुअली बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स स्टार्टेड बिकमिंग रिच मच बिफोर द यूके, राइट. And the big reason was the Dutch were good savers. So the cost of capital was low and therefore globally you could compete. Hamare yahan pe kisi bhi company ko 10-12% ke niche interest hi nahi milega. Wahan 6% milta hai. Acha, wahan pe jo ye philosophy hai, socialized losses and privatized gains. Jaise mujhe main naam nahi lunga, but ek bahut bade India mein bade entrepreneur jinki company bechari dub gayi ab, but bechare to nahi hai. डूब गई कंपनी उनकी. तो वो मुझे समझा रहे थे कि देखो तुम लोग जो ये सब बोलते हो कि ये बैंक्स ने लोन दिया और खराब हो गया, यार कैपिटल कहाँ से आएगा? इक्विटी कैपिटल तो है ही नहीं इंडिया में, किसी के पास वेल्थ ही नहीं है. तो अगर बैंक्स ने मुझे सस्ते में लोन नहीं दिया होता तो क्या होता? नाउ दैट्स वन फिलॉसफी. द इशू इज कि अगर आपने खूब सारा लेवरेज लेके तो बिजनेस चल गया आपका, तो आप भी लेने को जाओगे बहुत जल्दी, एंड बिकॉज द लेवरेज इज सो हाई. बट अगर खराब होगा
तो पब्लिक का पैसा
डूबेगा. ये चाइना ने सिस्टमैटिकली किया है, राइट, कि उन्होंने सबसे पैसे, तो दिस इज फाइनेंशियल रिप्रेशन. सो इससे क्या होता है, जैसे अभी भी थिंक अबाउट इट, अभी रियल एस्टेट में हालत खराब है, वो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो गया, घर की डिमांड अब गिरने वाली है, किसी को घर चाहिए नहीं. मैंने तो $6 trillion सोचा था, कोई बता रहा था $15 trillion के का पैसा जो है हाउस होल्ड ने डेवलपर्स को दिया हुआ है जो घर इनकम्प्लीट ही नहीं हुए हैं. अब वो 15 टेलेने की 6 टेलेने वो 6 टेलेने बहुत बड़ा नंबर है राइट. तो अब जिसके पैसे फंसे हुए हैं कहाँ कंज्यूम करेगा राइट. तो रियल एस्टेट से पैसा जा रहा है लेकिन अब ग्रोथ सपोर्ट करनी है और कंजम्पशन तो होगा नहीं. जैसे मैंने कहा था कि अब आप पेंशन एसेट है नहीं, सबकी उम्र जो है वो 40 के ऊपर, मतलब एवरेज 40 क्रॉस कर चुका है, कितने सारे लोग 50-55 की उम्र में किसी को कंज्यूम कर. एंड 4-1 का सिस्टम है
राइट,
4 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स और एक बच्चा. तो जो एक कपल है उनको तो 8 लोगों को सपोर्ट करना है राइट. तो कैसे करेंगे, तो इसलिए वो कंज्यूम करेंगे नहीं. अब सरकार क्या कर रही है कि फिर से कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है. डिड यू नो चाइना में कार मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी 50 मिलियन की हो गई. उनकी डोमेस्टिक डिमांड पीक गई थी 28 मिलियन पे, 38 मिलियन पे. ग्लोबल ऑटो डिमांड, पर्सनल व्हीकल का डिमांड 80 मिलियन है, 84 मिलियन है. 50 मिलियन की कैपेसिटी चाइना में बन गई है और केपेक्स बढ़ रहा है. लास्ट 2 साल में 20% बढ़ा है. ये सब इंडिया नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए राइट. आई डोंट थिंक दिस इज अ सस्टेनेबल मॉडल फॉर ग्रोथ राइट. सो कमिंग बैक टू दिस राइट, सो यू कैन नॉट डू व्हाट चाइना डिड
राइट
राइट एंड यू शुड नॉट डू व्हाट चाइना डिड. सो व्हाट कैन यू डू एंड व्हिच इज वेयर वी कम टू द सर्विसेज क्वेश्चन. सी अ लॉट ऑफ सो इफ यू एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड ऑफ बाई सेइंग इफ यू रिमेंबर कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स इज a much more sustainable and a stronger impetus to growth than you can think of.
So just before, you know, I think this is fascinating, Nilkanth. And before we go to services, so in bolen dur ke dhol suhavne, to वैसे बहुत बड़ी लगता है कि चाइना ने 30 साल तक यू नो 9-10% का at least 20 साल GDP growth maintain किया, इतने सारे लोग poverty के बाहर आ गए, per capita income $10,000 से cross हो गया, and all of that. But what you're saying कि if you look, you know, closely, there are a lot of deep structural issues
yeah.
that country is facing. It's like almost optically बहुत बढ़िया लग रहा है बाहर से, but is not necessarily translating to very good quality of life. And there is a some bit of at least low grade exploitation कि वो public का पैसा use करके इतना भयंकर infrastructure investment करा दिया है, and hence you know NPS I think China में काफी टाइम चले आ रहे हैं, पर नहीं अब तक कितना clean हुआ कब clean
हुआ. NPA का issue है ना, see one is that I think to their credit. See, they've got a lot of people into college. I think their average life expectancy has improved. It's now higher than in the US.
Higher
than in the US.
But वो कैसे होगा, मतलब जो earlier point की social security net नहीं है, 60 साल में retire हो जाएंगे और ज़्यादा जी भी रहे हैं.
नहीं नहीं, तो होता क्या है ना, you know, so एक तो कि आदमी की expectations change होते रहती हैं, right? I mean, so what I think is a good quality of life now is very different from what I thought was good everyday life when I was in college, right? सो वैसे ही वहाँ पे भी आई थिंक दैट इज देयर. सो इट इज ऑलवेज इंक्रीमेंटल. सी आपने 18-19 ट्रिलियन की इकॉनमी तो क्रिएट कर ली है, सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड आई थिंक इट इज द फास्टेस्ट एंड यू नो मोस्ट स्केल्ड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पॉवर्टी एंड बेसिकली जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपने मुहैया करा दी. वहाँ पे भी रूरल एरियाज में 80-90% ऑफ पीपल है वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर राइट. सो दैट इज फाइन. व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आपका ग्रोथ का प्रोपोर्शन क्या होता है ना. ओके सो लेट्स टेक अ स्टेप बैक. इकोनॉमी में या तो जो भी एक्टिविटी होती है या तो इन्वेस्टमेंट के लिए होती है या कंजम्पशन के लिए होती है. उसका डेफिनेशन ये है, कंजम्पशन हुआ कि हमने अभी खाना खा लिया बच गया. इन्वेस्टमेंट होता है कि हमने घर बनाया, फैक्ट्री बनाई, सड़क बनाई राइट. नाउ देयर इज अ सर्टन सस्टेनेबल मॉडल. क्या होता है कि अगर आप केवल कंज्यूम करते जाओगे तो एक लेवल के बियॉन्ड फिर यू विल रन आउट ऑफ कैपेसिटी, तो फिर दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करते रहना है. चीन ने क्या किया है कि अब 45% उनका जीडीपी इन्वेस्टमेंट ही है. भाई कंज्यूम कौन करेगा.
इंडिया कहाँ पर है, दैट्स सेम रेशियो 45.
सो 29% एज ऑफ नाउ. पीक साइक्लिकल होता है, पीक पे 35-36 था, अभी बहुत साल से गिर रहा था, विच इज वाई आई थिंक नेक्स्ट 5 इयर्स गोइंग टू बी गुड बिकॉज अब कैपेसिटी खत्म हो गई है. तो अब सब जगह पे प्लांट लगाने और घर बनाने हैं, ऑल दैट सो रियल एस्टेट साइकिल जो वी शुड डिस्कस इन द फर्स्ट पर्सपेक्टिव नाउ. तो होता क्या है ना कि आपने जैसे 45% आपका इन्वेस्टमेंट है, तो क्या होता है कि जब फैक्ट्री आप बना रहे हैं दैट इज जीडीपी बिकॉज दैट कंज्यूम स्टील, दैट कंज्यूम सीमेंट, दैट कंज्यूम लेबर, कंज्यूम ऑटोमेशन मशीनरी बना डिमांड. बट अगर वो फैक्ट्री यूज नहीं होगी तो फिर इनकम ही नहीं है. जैसे वेरी फेमसली नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर जाके लैंड करता है और एक जायंट इमिग्रेशन सेंटर है, आई एम श्योर उसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है ये प्लांट, एक आदमी वहाँ से इमिग्रेट नहीं करता। तो जब आप वो इमिग्रेशन सेंटर बना रहे थे, जब फ्लाईओवर बना रहे थे, तो आपका काफ़ी लोग एम्प्लॉयड होंगे, अगर वो यूज़ नहीं होगा तो फिर वो इनकम कहाँ से आएगी? तो जिसने उसको फंड किया था उसका क्या होगा? तो ये एनपीए वही है, तो दिस लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल लाइक ब्रिजेस टू नो वेयर।
हम लोग बात की जैसे वो घोस्ट सिटीज बन के पड़े हुए हैं, राइट, उस वक्त तो बढ़िया लग रहा था ये बढ़ रही है जीडीपी वगैरह, बट
करेक्ट, सो दिस इज द सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम, बट व्हाइल यू वर क्रिएटिंग दिस इनकम सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट, राइट? सो आई थिंक टू देयर क्रेडिट दे हैव सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वेल, बट इफ यू हैव अ लॉपसाइडेड डेवलपमेंट मॉडल लाइक दिस इट इज वेरी हार्ड टू सस्टेन बियॉन्ड अ पॉइंट, राइट? एंड
ठीक है, सो सर्विसेज की बात करते हैं अभी। सर्विस ऑल्सो इन सम वेज हैज बीन अ ब्राइट स्पॉट। IT सर्विस में इंडिया हैज़ डन ए कमेंडेबल जॉब, लाइक यू नो अगेन आई एम नॉट रिकॉर्डिंग नंबर बट समथिंग लाइक $250 billion ऑफ सो ऑफ दैट्स IT सर्विस एक्सपोर्ट है। आई थिंक बाकी सर्विसेज भी होंगी एंड वी हैव अ यू नो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड टू योर पॉइंट, यू नो 4x इंक्रीज इन द स्टूडेंट्स यू नो स्टडिंग इन कॉलेज एंड प्रॉब्ली गेटिंग सम बैचलर्स डिग्री, सो वी हैव अ एजुकेटेड वेल फॉर्म्ड फेयरली ग्लोबल mindset type of a workforce. So, Sarvi, what are the other big opportunities? You know, is there, what should we expect in the next generation?
See, the first thing is, when you think about services and you're thinking about jobs, you shouldn't just think about exports. And so, exports are very important. They help you pay for the energy you're importing, machinery you're importing and all of that. And as I was saying, it is important to get that boost in income so that you spend and you create other jobs.
So, you were saying, you can pay $50,000 for your bill.
There is a big opportunity. But in terms of number of people, say IT services, mein, abhi 54 lakh log hai, 5.4 million people.
It is, bhi kar doge to needle move nahi hogi.
Correct, 1% of the workforce, right? So, so aggregate jobs mein wo nahi hai. But ye zarur hai ki agar aap usko, matlab jo offshore mein bhi jo IT services mein kaam kar raha hai, usko $36,000 to $40,000 mein billing hoti hai saal ki.
Right.
To $40,000 billing wala, matlab kuch to kuch, to wo, maybe wo 12-15,000 rupees कमा रहा होगा, डॉलर कमा रहा होगा, और विच मीन्स दैट ही विल स्पेंड समथिंग और शी विल स्पेंड समथिंग, सो देर इज अ डिमांड. बट यू व्हेन वी थिंक ऑफ सर्विसेज वी हैव टू थिंक अबाउट सर्विसेज फॉर डोमेस्टिक डिमांड, बिकॉज रिटेनिंग इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर, यू नो रनिंग ऑफ शॉप्स, जैसे यू प्रीवियस एपिसोड यू टॉकिंग अबाउट कुछ करोड़, मतलब एक 1.25 crore तो रिटेल शॉप्स हैं, इफ यू ऐड द ढाबा एंड द छोटा रेस्टोरेंट्स दैट्स लाइकली मीनिंगफुली हाई, दैट इज अ वेरी लार्ज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऐसा नहीं है कोई दुकान खोल के ऐसे बैठा है, राइट, टाइम पास कर रहा है. सी अगर कोई गाँव में है आप, अगर दुकान नहीं है तो हर किसी को शहर जाना पड़ेगा, राइट? बट अगर गाँव में दुकान है तो आपका बहुत समय बच जाता है उसमें. इट्स अ प्रोडक्टिविटी बूस्टर, राइट? सो देयर इज अ सर्टेन वैल्यू व्हिच इज व्हाई दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. जैसे अगर आप जैसे हम लोग एक बार बनारस से बोधगया जा रहे थे, राइट, मतलब कुछ कॉलीग्स के साथ, पूरे रास्ते में कोई ढाबा ही नहीं दिखा. तो आधे लोग तो उसमें ट्रैवल ही नहीं करेंगे कि भाई घूमने की जगह नहीं है, टॉयलेट नहीं है खाने के लिए, पर आप बना दें वहाँ पे, मुहैया करा दें वहाँ पे, लोग ट्रैवल करेंगे. सो
जैसे बोधगया तो बहुत दूर होगा ना, कितना,
5-6 घंटा मे बी कम है उससे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट उनसे कम है.
चलो अब तो एयरपोर्ट बन रहे हैं सब जगह.
सी दिस इज वेयर आई थिंक यू हैव टू थिंक अबाउट कॉस्ट पर किलोमीटर एंड यू नो व्हाट इज मोर एक्सेसिबल. But yeah, but see, highways are coming up. So more than airports,
right.
I think, you know, the highways are coming up. And so when you think about, jaise abhi koi Maharashtra sarkar soch rahi hai ki bhai Mumbai to Goa expressway banayenge, Konkan expressway. To jaise abhi jo 12 ghante lagte hain, usko hum 6 mein karenge. But when you are there developing that, they are also thinking of rest stops every 50 kilometers, 100 kilometers of hotels along the pathway so that road gets in. You have to do that kind of planning. So there's a lot of domestic services demand in terms of tourism, in terms of retailing, in terms of eating out restaurants, healthcare, education. So all of these are services, right? So now, export services, so if you're thinking about that, so I think that export services may, in the next 20 years, business services exports are going to be way bigger than what IT services exports have been in the last 30 years.
Business service.
Yeah. What do I mean by business service, right? So, so business services exports are things like consulting, accounting, engineering, research.
आदमी की बात कर रहे हो या AI की बात कर रहे हो? बाद में पूछूंगा ये मतलब.
So, so there is a risk. I think people ask me that these things will AI se disrupt. Ho jayenge. So let's understand, right? So, ab jaise if you are a consulting firm, right? Ab kya hai ki jo senior consultant jo business lata hai, jisko ki khub sare paise milte hain, usko jaake shmooz karna hai client se aur wo strategy ka kaam lana hai, to usko on site rehne ki zarurat hai. Baki sab kaam jo India mein, राइट, तो आपको चैट जीपीटी पे सर्च क्वेरी चलानी है, पीपीटी बनाना है, वो भी आजकल शायद कोई एआई टूल बना ही देगा, तो वो सब करना है, डेटा क्रंचिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, जो उनका नॉलेज रिपोजिटरी है उसमें हंट करना है कि ऐसा ऐसा कहाँ पे केस स्टडीज हुए हैं. ऑल दैट हैपेंस इन इंडिया. फॉर सम ऑफ द स्ट्रेटजी कंसल्टिंग हाउसेज, देयर ग्लोबल डेटा साइंस डिपार्टमेंट इज रन आउट ऑफ इंडिया. कोई तू बता रहा था कि जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में ऑस्ट्रेलिया कनाडा से $12 पर आर की बिलिंग वाला पे यहाँ पे आपको ₹4 लाख में अकाउंटेंट मिलेगा. सो देयर सम प्लेसेस वेयर देयर इज 35% ग्रोथ. सी, आईटी में भी हायरिंग फ्रीज है, फलाना टेक में फंडिंग विंटर है, बट इन दोनों में खूब पैसे आ रहे हैं. अभी अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन करनी है, आपको लोग कहाँ मिलेंगे? तो इंडिया में मिलेंगे. अच्छा, और इससे क्या होता है, इनफैक्ट इसका जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट है ना, वो बहुत पावरफुल है. जैसे आई टी सर्विसेज में भी द नंबर ऑफ डॉलर्स दैट केम इन, द फैक्ट दैट बैंगलोर गॉट क्रिएटेड एंड दैट व्हाट बैंगलोर एक्सपेंडेड एंड हैदराबाद एक्सपेंडेड एंड पुणे एंड चेन्नई, लॉट्स ऑफ फिनोमिनल वेल्थ इफेक्ट एंड ऑल दैट. बट अ मच बिगर इम्पैक्ट इन माई व्यू हैज बीन दैट वी गॉट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एज एन इकोनॉमी, राइट? एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सो मेनी अदर थिंग्स हैपन्ड, राइट? सो जैसे अभी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, इट इज फिनोमिनल, राइट? सो दैट अलाउज यू टू ऑटोमेट मच फास्टर. तो बिजनेस सर्विसेज में सपोज, नॉट सपोज, देर इज लाइक यूएस के रिटेल चेन का ग्लोबल प्रोक्योरमेंट अभी इंडिया में हो रहा है. तो अगर कल को किसी इंडियन रिटेलर को प्रोक्योरमेंट का कोई एक्सपर्ट चाहिए, उसको यूएस जाने की जरूरत ही नहीं है. वो यूएस के रिटेल चेन ने सिखा के रखा होगा, उसको हायर कर लो. सो द ट्रांसफर ऑफ एक्सपर्टीज, द ट्रांसफर ऑफ हाउ टू डू थिंग्स स्मार्ट एंड यू नो फॉरवर्ड थिंकिंग, all of that will happen to India. Right. जैसे 10 साल बाद या 5 साल बाद अगर किसी को इंडियन ऑटो कंपनी को ईवी डिजाइनर चाहिए, कटिंग एज डिजाइनर्स मिलेंगे आपको यहाँ बैठे बैठे.
That's very powerful. I can also relate to, you know, my experience working with this company Skyroot. I think one of the four years together I talked about, right? See, हमें लगता है कि rocket science is it is very specialized obviously, but you know, US में rocket scientists बहुत महंगे होते हैं, जो fancy degrees होती हैं and all of that, right? बट स्काई रूट में इंजीनियर सेम काम करते हैं, और रॉकेट तो उसमें जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट. बट सैलरीज आर यू नो एनीवेयर फ्रॉम 1/5 टू इवन 1/10, एंड दैट्स अ एग्जांपल ऑफ अ पोटेंशियल बिजनेस सर्विस. आई मीन दैट, यू नो, देयर आर देयर इज अ कैलिबर ऑफ पीपल हियर हु कैन डू दिस कटिंग एज वर्क ऑल्सो फॉर पीपल एनीवेयर. दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री मे बी ऑफ अ स्ट्रेटेजिक नेचर एंड सो ऑन, बट इन अ पॉइंट इज दैट इफ यू अक्वायर स्किल्स ऑन सम ऑफ दिस मोस्ट स्पेशलाइज्ड jobs which may have a global demand, you know, that can become an industry of the future.
100%. The same thing is happening on R&D. So for example, there are semiconductor capital equipment companies where 25% of employees are in India. Did you know that 20% of chip design engineers globally are now in India?
Oh wow, 20% of chip designers globally
are in India.
Wow.
VLSI, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो चिप्स होते हैं.
दैट्स ग्रेट. आई मीन, यू नो, दैट्स पोर्टेंस वेरी वेल फॉर द फ्यूचर, यू नो, विद द.
यस, इट डज. बट यू सी द थिंग इज, एंड परहैप्स दैट्स व्हाई, यू नो, बीइंग इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, यू आर ऑलवेज काइंड ऑफ कंडीशन टू थिंक अहेड कि ये तो हो गया, राइट? मतलब व्हेनेवर समथिंग हैपेंस, ये तो प्राइस इन है, राइट? मतलब ये तो हो गया, दिस इज देयर. आई मीन 20% तो है, वॉट नेक्स्ट, राइट? सो
नहीं, उस 20% में एक है कि सिर्फ 20% ऑफ people employed might be there, but the value creation in the chip industry perhaps very small, probably, you know, what India is capturing.
Exactly.
Because hamare paas IP abhi nahi hai.
That's what I was
touching, right?
That's exactly what I was coming to. Give us, कोई इंडियन चिप डिजाइन कंपनी नहीं. तो क्या हो रहा है कि आप दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं.
$50 पे दिहाड़ी बहुत बढ़िया लगती
है. हाँ वही मतलब वेयर वी आर इट वॉज इंपॉर्टेंट टू गेट टू दिस. बट जैसे लुक एट द डिफरेंस बिटवीन आई टी सर्विसेज एंड सैस राइट. आई टी सर्विसेज फॉर्म में ऑफशोर बिलिंग रेट मतलब टेक 2100 आवर्स राइट. तो मतलब कुल मिला $16,000 पे बिलिंग, $15 पे बिलिंग होती है. तो मतलब 30 से 40 हज़ार डॉलर में साल का मंथ. सैस कंपनी का $1,000 पर एम्प्लॉय है, $1,00,000 पर एम्प्लॉय. सो वैसे ही चिप डिजाइन में वाई एंड वी डूइंग आउट कंपनी राइट. सो दैट इज वन. द सेकेंड इज एंड फॉर दैट टू हैपन यू नीड टू गेट दिस ईएमएस स्टफ राइट. सो देर आर सम पीपल हु से अरे ये तो क्या है स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है राइट. असेंबली हो रही है फोन की बॉस. तब वो आप करोगे तब तो यहाँ के चिप डिजाइनर को लगेगा कि भैया यहाँ पे फोन का अगला मॉडल यहाँ पे डिजाइन होने वाला है तो मैं उसमें अपना कैसे चिप घुसा दूँ.
राइट.
एंड दैट्स हाउ द इकोसिस्टम डेवलप. सो दैट्स वन. द सेकेंड इज आर वी यू नो डूइंग द राइट काइंड ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स. बिकॉज सी हम लोग ना सी वी कांट जस्ट लेट द मार्केट फोर्सेज वर्क. आई मीन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन द गवर्नमेंट शुड हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरवेंशन. बट कैन यू ओपन बिग पाइप्स. जैसे अभी अगर आई थिंक जापान के गवर्नमेंट के साथ है जैसे इतनी इलीगल इमिग्रेशन हो रही है राइट. मतलब हर जगह पे लोग इधर उधर जहाज पे बैठ के और डूब रहे हैं मतलब यू नो. एंड देन जब वहाँ जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं. वाई कांट वी गिवन दैट देर आर सो मेनी डेमोग्राफिक इशूज इन यूरोप इन जापान इन कोरिया इन US हैव फॉर्मल अग्रीमेंट्स कि भाई हम साल के 5 लाख 10 लाख आपको लोग भेजेंगे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट.
सो आई थिंक नीलकंठ यू आर एलुडिंग टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे पास इन सम वे लिटरली लेबर सरप्लस है एंड वी हैव सीन दिस वेव्स ऑफ माइग्रेशन इन द पास्ट ऑल्सो विच इज टू ए लार्ज एक्सटेंट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री एज वेल बिकॉज दीज पीपल सेंड मनी बैक. आई थिंक वी गेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डॉलर्स बैक फ्रॉम द NRI पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. लॉट ऑफ पीपल गो टू मिडिल ईस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन रिटेल जॉब्स कैनेडा फॉर I guess a lot of students, taxi driver, motels and so on. US, huge, you know, wave of technology experts. And they've sent something back to the country in terms of knowledge. Some of them come back to start businesses, you know, so they send money back. But you are saying ki we can look at this more systematically, which is a great idea. There is, you know, Europe is aging, Japan is aging and massive labor shortage as well. But this whole idea of doing something formally, I mean, sounds very exciting. Is it like realistic? Can the governments actually create these they're corridors and channels?
They're working on it.
Yeah.
So with Japan, I believe there is already an agreement with 200,000 or 250,000 plumbers and electricians that India will train. And Japan will be involved in this training. And then they will be given, I think, 3 or 5 year contracts. And they'll go there. And so that way, the country which is receiving them knows what it's getting. There is a certain expectation that they will actually go back as well. And so there are less law and order issues and all of that. So this is, I think, a better model. Just because it has not been attempted yet does not mean it shouldn't be attempted. There is, if I may say, certain resistance to immigration right now in the developed world. So, like the start of Trump, like 2016 onwards. So, if you see the number of immigration or the number of visas and all of that, it goes like this, 2016, and then, you know, falls off in the US.
Right.
In Europe, a lot of the politics and the elections this year will be about immigration, right? So you've seen what's happened in Germany and you know, all the, like, Italy. I mean, lots of these challenges are coming through. So, I think creating a formal structure where you even know that these guys are not going to get assimilated, right? So basically, these are not people who are going to come and settle. They have families back, and you know, so it's a much more prudent way to do this. And this has to be. So this is why I was saying this is we need not think that we have tapped out the full potential, right? So this is something that so one front, as we discussed earlier, is to increase the value add domestically, start to use some of these expertise. And the second is to create these formal channels where we start to provide more people. That's going to create a lot of income and all of that. And the third is that over a period of time, remember that big migrations do happen. And it reaches a certain threshold where the current population starts to think that बहुत हो गया, right? कि अब ये हमारा culture change हो रहा है, ये बाहर वाले आ रहे हैं, ये हो रहा है. The kids that are at that time, say 5, 7, 10 years old, by the time they grow up, they've already seen this kind of a mix of crowds. And if the assimilation is decent, and the US is very good at it, then the new wave of immigration happens, right? So like there was too much Jewish immigration apparently from Eastern Europe in the early part of the 20th century. And I don't know if you discussed this, but you know the some of the big universities actually brought in quotas, and they called it the Jewish problem. They didn't want too many Jewish students, and they started recruiting students from the South and the Midwest instead of New England, because they didn't want too many. So this was the extent of the migration. They had blocked Chinese and Japanese immigration in the 1920s. Right. They reopened it in 1960. So these things happen in cycles. But if you do it in a controlled way, I think the messaging to those populations also can be. So that's one. The third element that we need to do at a policy level is manage the spread of these jobs geographically. Right? 75% of our IT services jobs are in four cities. And given that a lot of these global capability centers and these business services jobs are coming through companies that already have a good experience with managing IT staff in India, they also kind of drifting in those areas. But those cities cannot keep growing, right? Or should not keep growing.
Yeah.
Right? Because there's beyond a certain size, getting people to migrate and then creating no new sort of social norms and sometimes law and order issues, right? There's too much of migration. So instead, you create jobs closer home. And so you create new centers like Bhubaneswar and Coimbatore and Nasik and other places. And so for that, there needs to be deliberate policy effort. So this opportunity can be much bigger. So for example, in FY23, the dollar value added by business services exports, the new growth, was almost the same as that of IT services. Even though in aggregate size, they were much smaller. So it's growing much faster. Huge opportunity. Very well diversified.
Right.
But we need to proactively manage a few.
I think two of my big takeaways from what we discussed so far is, one is there is a massive opportunity for job creation in this very micro manufacturing, quote-unquote, where just producing something for local consumption, and also microservices. Restaurants, retail, etc. And that's something in the headline, we forget that. We think of either factories or IT services, but which are important, but they will not consume bulk of the people who are working. And then this whole opportunity of, potentially work in the countries which have major labor shortage, participating in that, as well as just building this whole business services as a equivalent vertical to IT services and participating in a global.
Yeah, and even when we are thinking about, exactly, and that you summarized it well, but as we think about even these small businesses, right, which need to grow bigger, that's how they'll create jobs. Opening up access to various markets, right, we discussed GST in the last one, we discussed ONDC in the last one, and it's not just one company saying that we will have $6 billion or $10 billion of exports out of Indian suppliers to the US or global markets. But having much freer access so that they can tap into global markets is very important for these businesses to scale up and then start creating a lot of local employment.
All right, so let's zoom out. I want to just do some simple arithmetic, right? So 2047, Viksit Bharat ambition. I think our population should be about 1.6 billion or so, current projections. I'm assuming the median age of 28, which means everyone below age of 28, nearly everyone would have joined the workforce. Probably a lot of people would not have left by the time because that, trickles, that's much smaller set. So overall, people at the working age population, probably between 110 to 120 crores, right? And let's assume we aspire to 67% participation. That translates to nearly 70, 75 crore people who should have a really good employment. Today, we take 54, but 54 is not all high quality jobs, whatever discount we take. So that delta exists. an optimistic scenario, we figure out a way to create that many jobs, but it's also, it will require acceleration on many fronts simultaneously.
Mm-hmm.
Because just simple math at the end of the day, you are at A, you need to go to B, it's a certain growth that is required.
It compounds, right? See, this is where, you know, 7% growth on a 3 trillion economy is very different from a 7% growth on a 10 trillion economy, right? So the number of jobs that get created with those kind of incomes, and it need not just be for exports, right? So even basic stuff like, you know, like healthcare services. Mm. I mean, the number of doctors and nurses in large parts of India as a percent, like per 10,000 people, is abysmal. We need to provide those. And that will only happen, or not only happen, that one way of making that happen is through state intervention. So as tax generation happens, you can create more jobs.
Right.
And sometimes those jobs can create more jobs in the sense that if your morbidity rates fall, you have more working days left and therefore you can be more productive. One of the strongest and the most useful pieces of advice that I have got from my seniors when I was a young analyst is that take care of your body, because these are physically taxing jobs. Every day that you fall ill, you are not learning, you're not contributing, right? So if you have better healthcare, you have much lower morbidity and therefore better productivity. And for that, you can invest. Like, you know, in the New Deal, one of the things that Roosevelt tried was the start of creches, right? And it was a way of getting some income to women. It was not meant as a way of getting more women into the workforce,
right?
Because their kids could be taken care of. But that was the side effect, right? And so as the moment those creches came, a lot of women who had young kids would actually join the workforce, because there were one woman was, this is specialization. Right. This is how you. So I think those kind of frameworks also will mean that a lot of, because of state intervention, where the tax to GDP has gone up, the state starts to solve some of these problems and frees up people to do more work. So I would be quite optimistic.
Right.
But yeah, I think headed in the right direction.
But
making sure that significant income and wealth inequality does not emerge should be a policy priority.
And that's a whole different discussion. We'll park it for now. But look, any discussion on jobs in today's time will be incomplete without talking about potential impact on AI. So what I want to ask you is, you know, you as an economist and also maybe economists, you know, at least those who are interested in job creation, labor force, and so on, how are they studying this? Because, you know, AI is now suddenly hit an inflection point. It was happening slowly, people are ignoring it, and now it's mainstream. And the pace of progress is mind-boggling. Every few weeks, something is coming out which seemed not possible, you know. And this exponential curve will play out. It's, you know, I don't think anyone can truly predict what is going to happen, but something will happen for sure. So as an economist, how should one think about it? You know, what is the implication of that from potential job creation or even protection point of view? Like, what's the right framework to think about it and study this?
Yeah, so it's changing so fast that it's very hard to give definitive answers, but I'll talk about it at framework level. The first is that this is much more damaging to the developed economies where there is a very large middle section which can get automated away because of AI, right? So, for example, you know, text to video that I just launched yesterday are incredible, right? The proofreading, the speech writing, content generation, advertisements.
And these things are real. They're happening or going to happen.
They're happening. They're absolutely happening, right? So, or even, you know, to some extent, even code generation, right? So there are people who, in Bangalore, who say that we used to have a team of 9.
Right.
Now I have a team of 2 because, you know, the first draft of code is being generated by AI, you know, ChatGPT. So those things are happening. But as a percentage of jobs affected, this is going to be a much bigger issue in the developed economies than in economies like us, right? Because you can't, you know, take away construction jobs. There are many jobs where there's not going to be much of an effect. That's one. The second is that it actually is an opportunity for India as much as it is a threat. In the sense that just as, you know, as human society has evolved, your what is it that you can trade has been changing. So if you had told someone 50 years or 30 years back that, look, we're going to have a lot of services trade in Kabul, right? But, you know, it's about goods trade because that's how people used to trade. But the fact that cross-border internet bandwidth will expand at 35-40% has meant that there's a lot of services trade now. The fact that countries are wanting to put barriers on data transfer, I mean, there's a lot of trade in data. I think there'll be a lot of trade in intelligence. So you can train models on US data and operate them out of India. You don't need experts sitting in the US, right? So I think there is a lot of opportunity for India in terms of the stuff that happens on top of these models. Because some of these models will work independently.
Yeah.
But, you know, writing a text prompt so that some video ad gets generated, first, you no longer need a Caucasian model next to a redwood tree, because that can be done anywhere.
Yeah.
So might as well do it in India, right? Because the content writer is sitting here. So there's a lot of opportunity. There is also opportunity here in the sense that the unit costs start coming down. Why is it that, the small retailer, Parchun ki Dukanwala, that we want to get onto the ONDC, does not already have a web storefront? Because it takes 1 lakh rupees to write Shopify or Shopify, right? So basically, agar software ka cost kam ho jayega, to volume aise bhagega.
Right.
So when that happens, you can actually get a lot more of these services, make them accessible at low unit cost to a lot of other people. So there are many opportunities, but there are risks. So for example, as I said, you know, if a lot of code testing and code writing can be automated by AI, you need to reskill a lot of people, and you need to be very agile on all the new opportunities that come. You need to be very agile on how policies are framed, because if you are able to shape the way policies and trade agreements are being structured, it can become a systemic advantage for you 10 years down the line.
Yeah, I can, you know, only hope that, you know, people in the policy are paying a lot of attention, because this thing is happening, you know, really fast. It's probably one of the biggest changes of our lifetime. And profound implications for society, employment, you know, just overall security that, you know, people derive from the jobs they have.
And so one caution, and I know we are allowed to have different opinions, right. And we will have different opinions. I mean, we can keep debating as we used to at college throughout the night. That I think the pace of it is perhaps, in terms of the way it gets adopted in real life, is going to be a lot slower than people think.
Possible. See, I mean, sure, I totally see where you are coming from. I mean, there is a, but we've also seen acceleration of adoption, you know, let's say internet adoption versus mobile phone adoption, right? Versus, so I think there is a general acceleration.
Yes, in our house तो वो करते हैं
राइट
बट जब आया था तो हम रोज बैठ के खेलते थे उससे अब वो आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई यूज्ड डैली सो द अडॉप्शन ऑफ डैली और द अडॉप्शन ऑफ चैट जीपीटी यू नो गोइंग टू 100 मिलियन यूजर्स मे हैव बीन द फास्टेस्ट
राइट
बट हाउ क्विकली इट स्टार्ट्स टू अफेक्ट जॉब्स इज समथिंग दैट
फेयर ओके एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू एग्जैजरेट आल्सो
यस
एंड टेक्नोलॉजी इटसेल्फ नीड्स टू गो थ्रू सम मैच्योरिटी कर्व यू नो सो या I don't disagree with you much actually on that point.
Okay.
So Neelkant, this is, you know, amazing. I think we've at the end of our 4-part series. I'm really glad that you invested 20 years of your life thinking very deeply about topics that really matter in the kind of economic health of the country, how it is connected to, you know, just historical context, both in India and globally. The, you know, society, policy, economics, they are like intermingled in very, very complex way. And you have an amazing way of, you know, distilling it down to very simple frameworks, concepts that, you know, people can follow along. You've, you know, patiently answered all the questions over the last 4 episodes. I'm super thrilled. I think it's one of the best things we have done in this podcast. And I'm very confident people will learn a lot from this and hopefully take a lot more interest in learning about Indian economy and participating in that.
Well, thank you. You've been very kind. You're clearly a friend. And I'm glad that we did this. I really enjoyed our conversation. So thank you for having me on the show.
Amazing. Thank you.
Thank you.
At Sparx, we aim to bring to you stories of exponential impact. We share in-depth analysis of what goes behind success stories. If you find our conversations interesting, you can join us by subscribing to our YouTube channel. You can also listen to Sparx on Spotify, Apple Podcast, or any other audio platform of your choice. If you have any suggestions on who we should invite or what topics we need to cover, just let us know in the comments. We are always listening, looking for ways to improve, and keep getting better as we go along.